আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے عالم اسرار قلوب, دلوں کے رازوں کو جاننے والا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظلمت قدائے عالم میں مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, کسی قوم کی طرف, کسی شہر کی طرف, کسی علاقے کی طرف نبی یا رسول بنا کر بھیجا. لیکن وہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے, ان کی رسالت کسی خاص علاقے کے لیے, کسی شہر کے لیے, کسی قوم کے لیے. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں دو نبی بھی تشریف لائے, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون علیہ السلام, دونوں نبی, اور دونوں ہی ایک ہی دور میں. غرض یہ کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام, یعنی 124,000 یا کم و بیش جتنے بھی آئے, اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو نبی جس قوم کی طرف آیا, جس علاقے کی طرف آیا, جس شہر کی طرف آیا, اللہ تبارک و تعالی نے اس علاقے کا, اس شہر کا, اس قوم کا علم اسے کلی طور پر عطا فرما دی. ظاہر ہے جب وہ اس قوم کو نہیں جانے گا تو ہدایت کیسے دے گا, جب ان کے حالات سے واقفیت نہیں ہوگی تو ہدایت کیسے دے گا, جب اس شہر کے حالات, ان تمام چیزوں سے علم نہیں ہوگا تو ہدایت کیسے دے گا. جہاں تک اس کی نبوت, وہاں تک اس کا علم, وہاں تک اس کا اختیار. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام, اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کسی قوم کی طرف, کسی شہر کی طرف, کسی ملک کی طرف, اتنا ہی ان کا علم. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری کائنات کے لیے, کسی ایک علاقے کے لیے نہیں کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف عرب کے لیے رسول بنا دیا, پھر عجم کا رسول کون ہوتا, اور عجم کے لیے بنا دیا جاتا تو عرب کا کون ہوتا, مکے کے رسول ہوتے تو مدینے کا کون ہوتا, اور مدینے میں رسالت ہوتی خالی صرف مدینے والوں کے لیے تو مکے کا رسول کون ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا تو پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا. جب پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات کا علم بھی عطا کر کے بھیجا, پوری کائنات پر اختیار بھی عطا کر کے بھیجا, اور پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رسول بنا کر بھیجا. اور مخلوقات کتنی ہیں, صرف انسان ہی نہیں, ہمیں تو انسان نظر آتے نا, زمین پر انسان ہے. تو کیا حضور صرف زمین والوں کے رسول, زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے, زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے, زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے ان سب کے رسول, سمندر میں جتنی مخلوق ہے ان سب کے رسول, فضاؤں میں جتنی مخلوق ہے ان سب کے رسول, اور ان فضاؤں سے اوپر آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے ان سب کے رسول. تو جب سب کے رسول ہیں تو سب کا علم ہونا چاہیے, سب پر اختیار ہونا چاہیے, اور وہ مخلوقات بھی جانتی ہیں کہ ہمارے رسول. ایسا نہیں کہ سرکار نے فرما دیا میری رسالت سب کی طرف ہے اور میں سب کا رسول ہوں. حضور نے تو فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, مگر وہ تمام مخلوقات जो जमीन पर है या जमीन में है, समंदर पर है या समंदर में है, फिजाओं में है या आसमानों में है या हवाओं में है, जहां भी मखलूकात हैं उन तमाम की तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन तमाम का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर शय का इल्म रखते हैं, हर शय का इल्म रखते हैं, तमाम मखलूकात को जानते हैं, तमाम इंसानों को, अपनी उम्मतियों को उनके अहवाल से बाखबर हैं, और हर एक का इल्म अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दिया। बहुत सी अहादीस इस सिलसिले में वारिद हुई हैं, लेकिन हम चंद आपके सामने पेश करेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस और ये मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत फरमा रहे, इमाम आगे होता है ना, मुख्तदी पीछे होता है, इमाम का चेहरा किस तरफ होता है, किबले की तरफ, और पीठ मुख्तदियों की तरफ। जाहिर है इमाम आगे खड़ा होगा तो चेहरा उधर, उसकी पीठ इधर। अच्छा, जिस तरफ चेहरा होता है उसी तरफ आदमी देख सकता है, और जिधर पीठ हो वहां नहीं देख सकता। आपका चेहरा मेरी तरफ है, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके पीछे क्या हो रहा है। मेरा चेहरा आपकी तरफ है, मैं आपको देख रहा हूं, मुझे नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, ठीक है ना। इंसान का चेहरा जिधर है, आंखें चेहरे पर ही है ना, जिधर आंखें हैं उधर ही देखेगा, यह हमारी कैफियत। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखो, सरकार ने इमामत फरमाई और सहाबा से फरमाया, हल तरौना क़िबलती हा हुना, तुम क्या समझते हो कि मेरा मुंह क़िबले की तरफ है, हल तरौना क़िबलती हा हुना, मेरा मुंह क़िबले की तरफ है, फवल्लाहि मा यख्शा अला खुशूकुम वला रुकूकुम, खुदा की कसम ना तुम्हारा खुशू मुझसे पोशीदा है ना तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा। सहाबा रुकू कर रहे हैं ना, ना तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा है और ना तुम्हारा खुशू पोशीदा। अच्छा, अब एक सवाल पैदा हुआ, अगर सिर्फ ये फरमा देते कि तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा नहीं तो बात हो जाती कि रुकू तो एक जाहिरी चीज है, लेकिन इसमें भी एक सवाल पैदा हो सकता था कि हम ये कहते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू तो सहाबा कर रहे हैं पीछे और आपका चेहरा मुबारक आगे, आप कैसे देख रहे हैं। ये भी एक मौजज़ा है ना कि चेहरा आगे है मगर पीछे देख रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर एक बात यह है कि फरमाया तुम्हारा खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं। खुशू दिल की कैफियत का नाम है, और दिल की कैफियत दूसरा नहीं जानता। किसी पर कोई कैफियत तारी हो रही है, एक आदमी बराबर बैठा, उसको क्या पता कि इसके दिल में क्या गुजर रही, नहीं पता ना, कोई नहीं जानता। जाहिरी कैफियत, जाहिरी आमाल, जाहिरी हरकत और सकनात सब देख सकते। मसलन कोई आदमी आपके पास, आपके सामने नमाज पढ़ रहा, उसने जल्दी जल्दी रुकू किया, खड़ा हुआ, कयाम रुकू सुजूद जल्दी से, आपने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई। क्यों? तूने तादीले अरकान नहीं की। नमाज में तादीले अरकान जरूरी है, और तादीले अरकान क्या है? इत्मीनान, इत्मीनान के साथ खड़े हो, अदल, तमाम अरकान के साथ अदल, इसको कहते हैं तादीले अरकान। क्या मतलब? खड़े हुए, कयाम, फिर रुकू किया, तीन तस्बीह की मकदार रुकना जरूरी है, और उससे ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम, ऐसा नहीं कि रुकू में गया फौरन खड़े हो गए, या सजदे में गया फौरन एक मरतबा सुभान रब्बी अलाला का और एकदम उठ गए, गलत, कम से कम तीन मरतबा। इसको क्या कहते हैं? तादीले अरकान। तो अगर कोई सामने कर रहा हो तो हम उसको रोक दें कि भाई तुमने गलत किया है, ऐसा ना करो। लेकिन सरकार की शान क्या है? चेहरा मुबारक किबले की तरफ है। फरमाया वल्लाही, फवल्लाही मा यख्शा अला खुशूकुम वला रुकूकुम, ना मुझसे तुम्हारा खुशू पोशीदा है ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है। खुशू दिल की कैफियत का नाम है, कि ना तुम्हारी दिल की कैफियत मुझसे पोशीदा है ना जाहिरी हालत पोशीदा, मैं सबको जानता हूं। फिर फरमाया इन्नी लराकुम मिम वरा जाहरी, और बेशक मैं अपनी पीठ के पीछे भी देखता हूं, जैसे आगे देखता हूं ना ऐसे पीछे भी देखता हूं। पीठ के पीछे हम नहीं देख सकते, हुजूर की शान है कि हुजूर देखते हैं। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये शान अता फरमाई है कि जैसे सरकार सामने देखते हैं ऐसे ही पीछे भी देखते हैं, और जो भी आ जाए चाहे वो सामने हो या कहीं छुपा हुआ हो, उसकी जाहिरी कैफियत हो या कल्बी कैफियत हो, हुजूर अलैहिस्सलाम उन तमाम कैफियत को जानते हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान है। ये हदीस शरीफ सही बुखारी में और सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। दूसरी रिवायत, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से गुलामों से एक सवाल किया और एक आदमी था उसके मुतालिक सवाल किया। सरकार ने फरमाया मालिक बिन वख्शन कहाँ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मुनाफिक है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रखता। किसने कहा? लोगों ने, सहाबा ने हुजूर से कहा। जब सरकार ने पूछा ना वो कहाँ है, या रसूलल्लाह वो तो मुनाफिक है, वो ना अल्लाह से मोहब्बत रखता है ना उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। अब सुनो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि उसने अल्लाह की रजा के लिए कलमा पढ़ा, उसने अल्लाह की रजा के लिए कलमा पढ़ा है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि तुम उसके दिल को नहीं जानते, मैं जानता हूं। उसने अगर कलमा पढ़ा है अल्लाह की रजा के लिए, यानी वो मुनाफिक नहीं है, मोमिन है। और कल्ब की ईमान होता है दिल में। आप देखें ना, निफाक दिल में, अदावत दिल में, मोहब्बत दिल में, रियाकारी दिल में, हर चीज दिल में। मोहब्बत दिल में है, ईमान दिल में है, निफाक दिल में है। अब अगर किसी के दिल में निफाक हो, उसको आप कैसे पहचाने? पहचानना बड़ा मुश्किल है। सरकार ने निशानियां तो बताई हैं मुनाफिक की, कि बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। ये तीन निशानियां तो बता दी, और अहादीस में भी दीगर निशानियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक की बताई। लेकिन निफाक दिल की कैफियत है, खुशु दिल की कैफियत है, ईमान दिल के अंदर, उसको कैसे पहचाने? हुजूर अलैहिस्सलाम जानते हैं कि कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन, कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, किसके दिल में क्या है, निफाक है या क्या है। उन्होंने कहा रसूलल्लाह वो तो मुनाफिक है। फरमाया नहीं, उसने अल्लाह की रजा के लिए कलमा पढ़ा, अल्लाह की रजा के लिए कलमा पढ़ा है। पता चला कि उसकी कल्बी कैफियत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पोशीदा नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जाहिर। एक सहाबी ने जंग में तलवार उठाई काफिर को मारने के लिए, जैसे ही तलवार करीब पहुंची उसने फौरन कलमा पढ़ लिया, जैसे ही कलमा पढ़ा इन्होंने फिर भी मार दिया, कत्ल कर दिया। ये बात हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची। सरकार ने बुलाया फौरन, तुमने ऐसा किया? हाँ या रसूलल्लाह ऐसा किया। फरमाया जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो फिर क्यों मारा? तुमने तलवार उठाई, उसने कलमा पढ़ लिया, छोड़ देते, क्यों मारा फिर? या रसूलल्लाह उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा था, इसलिए मैंने मार दिया कि जैसे मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे छोड़ दे। उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा था। सरकार ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? गौर कीजिए, क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था कि उसने मौत के डर से पढ़ा है जलाल की कैफियत में? पता ये चला कि कल्बी कैफियत अल्लाह का रसूल जानता है या उनके गुलाम औलिया इकराम जानते, कल्बी कैफियत कोई नहीं जानता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मालिक बिन वख्शन ने जो कलमा पढ़ा है वो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर चीज को आशकारा फरमा दिया, जाहिर फरमा दिया। तीसरी रिवायत, हजरत सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इसको रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैं मस्जिद मिना में, मिना में मस्जिद है ना, मस्जिद मिना में हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अकदस में हाजिर हुआ। मैं सरकार के पास जाकर बैठ गया तो मैंने देखा कि एक अंसारी आया और आकर उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे कुछ सवाल करूँ, आप मुझे उसका जवाब दें। सरकार ने फरमाया, ठीक, हम तुम्हें जवाब देंगे। इतनी देर में एक सकाफी आ गया, एक कबीले से ताल्लुक रखने वाला, उसने आकर कहा, मेरे भी कुछ सवाल हैं, मैं चाहता हूं मैं आपसे सवाल करूं, आप जवाब दें। फरमाया, अंसारी पहले आया है, उसका नंबर पहले है, पहले उसको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अंसारी को बुलाया। सरकार ने फरमाया, जो तू पूछना चाहता है मैं वो बता दूं, या तू मुझसे पूछे फिर बताऊं? जो सवाल लेकर आया है मैं सवाल बता दूं, या पहले तू सवाल कर ले फिर? उसने कहा, अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात। फरमाया, ठीक है। फरमाया, सुन, तू मुझसे रुकू और सुजूद के मुतालिक और नमाज और रोजे के मुतालिक पूछने आया। उसने कहा, खुदा की कसम बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही पूछने आया, इसमें एक लफ्ज इधर से उधर नहीं है। ऐ अल्लाह के हबीब, जो कुछ आपने फरमाया है ना इसमें कमी है ना ज्यादती। सरकार ने जवाब दे दिया, सवाल बता दिए, जवाब भी बता दिया। उसके बाद वो सकाफी जो आया था वो खड़ा हो गया। अब मेरे सवाल, फिर वही इरशाद फरमाया, जो सवाल तू लेकर आया है वो तू मुझसे सवाल करेगा, या मैं पहले सवाल बता दूं फिर जवाब बता? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि सवाल भी बता दें जवाब भी। फरमाया, सुन, तू ये पूछने आया है कि बैतुल हराम के इरादे से निकलने में तेरे लिए क्या सवाब, और ये पूछने आया है कि अराफात के मैदान में खड़ा होने में तेरे लिए क्या सवाब है, और ये पूछने आया है कि आखिरी तवाफ करने में तेरे लिए क्या सवाब है। जैसे ही उसने सुना, उसने कहा, खुदा की कसम मैं यही पूछने के लिए आया, एक लफ्ज न इससे कम है न इससे ज्यादा है। या रसूलल्लाह, जो आपने फरमाया बिल्कुल हक है और बिल्कुल सच। हुजूर मुस्कुरा दिए और फिर पहले सवाल बता दिए फिर उसका जवाब भी बता दिए। ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। और इससे बढ़कर एक और रिवायत, ये रिवायत जो है तरकीब व तरहीब में मौजूद है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला ने इस्लाम लाने से पहले बड़ी जंगें लड़ी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शदीद मुखालिफ, हर जंग में हुजूर के खिलाफ, हर गज़वे में खिलाफ, साजिशें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जंगे बदर तो हुई इसीलिए कि हजरत अबू सुफियान जो काफिला लेकर गए थे, तिजारती काफिला, जिसमें मक्के के तमाम रुआसा ने अपना पैसा लगाया था, जब वो काफिला वापस आ रहा था तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको रोकने की कोशिश की, तभी ये रास्ता बदल के निकल गए और फिर वहाँ पहुँच गए। यानी ये उसका जंगे बदर का पस मंज़र था। और बाद में फिर ये लोग बड़े जोश में और गुरूर तकबुर में फिर ये लड़ने के लिए आए। खैर, बहरहाल वो एक अलग बात है। कहने का मकसद ये कि हर मौके पर इस्लाम की और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत। लेकिन क्या हुआ, जब मक्का फतह हुआ, अब जितने भी थे मुखालिफिन सब परेशान कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुव्वत में हैं, गलबे में, कई लाख सहाबा हुजूर के साथ, मक्का फतह हो चुका, मुसलमानों का मुकम्मल कब्जा हो चुका, बैतुल्लाह से सारे बुत निकाल दिए गए, बैतुल्लाह की छत पे से, उसके अंदर से, उसके बाहर से, हरम में से सब बुत निकाल के फेंक दिए, बिल्कुल पाक साफ तवाफ हो रहा है। जहां पर 360 बुतों की पूजा की जाती थी, वहां एक वाहदहू ला शरीक की इबादत हो रही, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद हो रही। डर रहे काफिर, परेशान। उस मौके पर हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला मुसलमान नहीं हुए थे। रिवायत में आता है कि बैठे हैं, अपने दिल में सोचा, जबान से नहीं कहा, दिल में सोचा, काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लश्कर तैयार कर सकता। होता है ना आदमी को एक हसरत होती, काश ऐसा हो जाए। देखो इनका गलबा हो गया, ये आ गए, हमने इतनी लड़ाई की फिर भी हम रह गए, इतने हमारे बड़े बड़े सूरमा मारे गए, इतने लीडर मारे गए, इतने कबीलों के सरदार मारे गए, अब तो मक्का इनके कब्जे में। तो खामोश बैठे हैं, जबान से नहीं कहा, दिल में सोचा काश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मैं एक लश्कर तैयार कर सकता। अभी ये सोचा ही था और सोचे हुए एक मिनट नहीं गुजरा कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा, पलट कर देखा तो नबी पाक अलैहि सलातो वसलम। फरमाया अबू सुफियान अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह ताला तुझे रुस्वा कर देगा, अगर ऐसा हो भी गया तो अल्लाह तुझे रुस्वा कर देगा। हैरान और परेशान रह गए, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से पहले मैं आपको नबी नहीं मानता था, लेकिन आज मैं मान गया कि अभी दिल में सोचा और अभी आपने बता दी। जबान से नहीं कहा, दिल में सोचा मैं लश्कर तैयार कर दे। सरकार ने कमर पे हाथ रख दिया, अबू सुफियान अगर ऐसा हो जाएगा तो अल्लाह तुझे रुस्वा कर दे। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इसीलिए हम कहते हैं हुजूर जानते हैं, जानते हैं ना, और क्या जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जाहिर को जानते हैं, बातिन को जानते हैं, इस दुनिया को जानते हैं, उस दुनिया को जानते हैं, आलम दुनिया, आलम बरजख, आलम आखिरत, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, जितने भी आलम अल्लाह ने पैदा किए 18,000 आलम, वो सब हुजूर जानते हैं। अल्लाह तबारक बताना ने उन तमाम चीजों का इल्म अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकम्मल तौर पर अता फरमा दिया। यह हमारा अकीदा, और हमारा अकीदा कुरान से और अहादीस सहीहा से साबित। कितने अफसोस की बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नियतों में ही फुतूर है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं की शान में गुस्ताखी, उन्हीं के इख्तियारात को कम करना, माजल्ला। वो नहीं जानते, कौन नहीं जानते, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला को पता था ऐसे फितने पैदा होंगे, इसीलिए उसने फरमा दिया वा अल्लामा का, ए महबूब हमने आपको सिखा दिया। क्या सिखा दिया, किसी इल्म की तख़सीस नहीं फरमाई। ये नहीं फरमाया हमने शरीयत का इल्म सिखा दिया, ये नहीं फरमाया हमने तरीक़त का इल्म सिखा दिया, ये नहीं फरमाया हमने हकीकत का इल्म सिखा दिया, ये नहीं फरमाया हमने मारिफत का इल्म सिखा दिया, ये नहीं फरमाया कि दुनिया का इल्म सिखा दिया, ये नहीं फरमाया कि आखिरत का इल्म सिखा दिया, किसी इल्म की तख़सीस नहीं फरमाई। क्यों? अगर ये कहा जाता कि हमने अपने महबूब को शरीयत का इल्म सिखाया तो ये बदबख्त कहते तरीकत नहीं जानते, और अगर अल्लाह फरमाता कि हमने तरीकत का इल्म सिखाया तो कहते शरीयत नहीं जानते, और अगर अल्लाह फरमाता दोनों का इल्म सिखाया तो कहते हकीकत नहीं जानते, और अगर अल्लाह फरमाता तीनों का सिखाया तो कहते मारिफत नहीं जानते, अगर अल्लाह फरमाता दुनिया का इल्म सिखाया तो कहते आखिरत का इल्म नहीं जानते। तो वो तो खालिक कायनात है ना, जो हो चुका है जानता है, जो हो रहा है जानता है, जो आइंदा होने वाला है वो भी जानता है, जो उसकी शान है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो बिज़ात जानता है और नबी उसके बताने से जानता। बात समझ में आई? तो उसको पता था ये फितने पैदा होंगे, ये मेरे महबूब की शान को, उनके इल्म को, उनके मकाम को, उनके मर्तबे को कम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ऐसा जुमला फरमा दिया जिसमें सारे जवाब हो गए। अब इन्होंने क्या कहा, हुजूर नहीं जानते, माजल्ला, इन्होंने कहा नहीं जानते, और अल्लाह ने क्या फरमाया वा अल्लामा का, ए महबूब हमने आपको सिखा दिया। क्या सिखा दिया, मालम तकुन तालम, जो कुछ महबूब आप नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया, जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया। वकान फजलुल्लाह अलैका अजीमा, और ये आप पर आपके रब का बहुत बड़ा फजल, आप पर आपके रब का बहुत बड़ा फजल है। अब लिस्ट बनाओ क्या नहीं जानते थे। हमने कहा तुम कहते ना कि हुजूर नहीं जानते, माजल्ला, हमारा अकीदा तो नहीं है, हमारा अकीदा तो है कि सब जानते, तुम्हारा ये है कि नहीं जानते। अब तुम लिस्ट बनाओ क्या नहीं जानते थे। अब ये बनाएंगे दुनिया में आखिरत में, फला इल्म ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। हमने कहा लिस्ट फाड़ दो, क्यों, खुदा ने कहा हमने सब कुछ सिखा दी। एक जामे जुमला है ना, जो कुछ नहीं जानते सब कुछ सिखा दिया। सब कुछ में सारे उलूम आ गए, सब कुछ में सारे उलूम आ गए, जितने उलूम हैं सब इसी के अंदर हैं। यही वजह है कि साइंस आज जिस चीज को तहकीक करके साबित कर रही है, मेरे तुम्हारे आका ने 1400 साल पहले फरमा दी। पहले डॉक्टर कहते थे बुखार में ठंडा पानी इस्तेमाल न करो, जिस मरीज को बुखार हो नहाए नहीं, ठंडा पानी ना पिए। और हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया बुखार जो है आग, फरमाया अब रिदु बिल मा, इसको पानी से ठंडा करो, इसको पानी से ठंडा करो। कब फरमाया? 1400 साल पहले। साइंस तहकीक कर रही है, नहीं पानी इस्तेमाल नहीं करो, पानी इस्तेमाल नहीं करो, बुखार वाले को पानी इस्तेमाल नहीं, नहाए नहीं, सारी तहकीक गलत हो गई। घूम फिर के फिर वहीं पर आए और आकर कहते हैं कि जिसको बुखार हो उसको पानी से नहला दो, बुखार उतर जाए। साइंस ने आज तहकीक की, मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया। सरकार ने फरमाया कुत्ता जिस बर्तन में मुंह डाल दे उसको मट्टी से मांजो, मट्टी से, और फिर पानी से 3 मरतबा पाक करो, पाक हो जाए। हदीस शरीफ, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं। कब फरमाया? 1400 साल पहले या इससे भी ज्यादा। साइंस तहकीक कर रही, कुत्ता अगर मुंह डाल दे तो क्या किया जाए, कैसे साफ किया जाए। उन्होंने कहा कुत्ते के लुआब में ऐसे जरासीम हैं जो सिर्फ मट्टी ही से साफ करने से मरते हैं। मट्टी से तहकी करके, मट्टी पे तहकी कर रहे हैं, उसके लुआब पे तहकी कर रहे हैं, तहकी करके आज साबित कर रहे हैं, मेरे आका ने पहले फरमा दिया है ना। हुजूर की शान, कुर्बान हो जाओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, एक एक चीज को लेते जाओ और देखते चले जाओ, आखिर में इल्मे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर पूरी साइंस सरबसुजूद नजर आएगी। इसी को कुरान ने कहा ना, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, मेरा महबूब तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता। सिर्फ किताब ही नहीं, हिकमत, हिकमत की तालीम भी देता है। एक एक हदीस को उठाकर देख लो, साइंस बदलती रहेगी। सरकार दो आलम अलैहि सलातो व सलाम की हदीस और उनकी जबाने रिसालत से निकली हुई एक एक बात पत्थर की लकीर है, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। साइंस की आज तहकीक कुछ है, कल कुछ है, रिसर्च हो रही है ना। आज तहकीक की, साइंसदानों ने साबित किया, हाँ जी ये चीज है, बस ये कंफर्म है, इसके बाद कुछ नहीं। कोई और साइंसदान आया, उसने और तहकीक की, और तहकीक की, नए आलात इजाद हुए। कहा नहीं ये पहली गलत थी, अब ये है लेटेस्ट, लेटेस्ट तहकीक। इसी तरह आप देखें दवाएं बदलती रहती, अब बहुत सी दवाएं तो बदल भी जाती हैं, पता भी नहीं चलता, वही लोग खा रहे हैं बेचारे, नुकसान हो रहा है उनको। कहा नहीं ये पहले वाली गोली सही नहीं थी, उसमें ये नुकसान, अब ये नई, बदलती है और बदलती रहेगी, तहकीकात सामने आती रहेंगी। लेकिन इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा अथेंटिक इल्म है जिसमें कोई तब्दीली नहीं है, जो 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमा दिया वही हक है, वही सच है, उसमें कोई कमी या ज्यारती कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी अजीम तहकीक और ऐसा अजीम इल्म, अथेंटिक इल्म जिसे कहा जाता। ये समझते नहीं जी हमारा साइंस का इल्म बड़ा अथेंटिक, देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, देखो ये मौलवी अभी तक इसी में लगे हुए हैं, ये अभी तक यही कर रहे हैं। एक वाकया जहन में आया, सुना देता हूं तहदी से नेमत के तौर पर। एक ऑफिस में हम गए, सारे अप टू डेट लोग थे, पैंट शर्ट कोट, अंग्रेजी बोलने वाले, पीआईए का ऑफिस था, काफी पहले की बात। मैं था, मेरे बिरादर गिरामी सैयद अशरफ हकीम, सैयद अशरफ जिलानी जीद मजदू मेरे साथ, हम सिर्फ दो ही दाढ़ी वाले थे, बाकी सब सब साफ, एक से एक अप टू डेट। अब उन्होंने देखा ये मौलवी बैठे हैं, हम गए थे अपनी सीट रिजर्व कराने के लिए, कंप्यूटर पे बैठे हुए कर रहे हैं। अब देखकर कुछ शैतानियत उनके अंदर आई, उन्होंने कहा इन मौलवियों को छेड़ो उधर, ये दो दाढ़ी वाले अंदर आ रहे हैं। अब क्या कहते हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अरे ये मौलवी अभी तक लगे हुए हैं कि ये है वो है, देखो इंसान चांद पे पहुंच गया, साइंस ने कैसी तरक्की कर ली, ये मौलवी तो अभी तक ऐसे ही। हालांकि हमने उनको छेड़ा नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, हम तो सीट रिजर्व कराने गए थे, कोई बात नहीं की, खामखाई। हमने एक दूसरे को देखा लेकिन खामोश रहे, अब इनसे क्या बहस करें भाई, हमने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम हमें करो। लेकिन एक शैतानियत होती है, लेकिन याद रखो जब शैतानियत सर चढ़ती है तो फिर रहमानियत भी उसका जवाब देती, अल्लाह ताला खुद मदद करता। हमने सोचा कि खामोश रहो, इनसे क्या मुंह लगे, इनसे क्या कहें, अब वो आपस में बातें कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठे, देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, इंसान चांद पे पहुंच गया, कंप्यूटर पे देखो अभी हम बैठे हैं, फट से हमने इधर ये डेटा फीड किया, ये किया वो किया, मौलवी अभी तक उसी में लगे हुए। उसने ये कहा देखो साइंस ने कैसी तरक्की की, अभी हम बैठे कंप्यूटर पे ये कर रहे हैं, उसी बार लाइट चली गई, सारी साइंस धरी की धरी रही, कंप्यूटर बंद, लाइट नहीं था कंप्यूटर बंद, और अल्लाह के फजल से वो जनरेटर भी नहीं था। शर्मिंदा हो गया बेचारा, खामोश, दिल तो चाहा कि मैं उससे कहूं कि कहां गई तुम्हारी साइंस, तो मौलवियों को बुरा कह रहे थे ना, दाढ़ी वालों को, कहां गई साइंस, अब साइंस आए ने चलाए कंप्यूटर को बगैर लाइट के। लेकिन मैंने सोचा इतना ही काफी, अल्लाह ताला ने खुद ही हमारी मदद कर दी। शर्मिंदा होकर और जिद हो गया कि मैं क्या करूं, कभी इधर दबा रहा है उधर दबा रहा है, लेकिन वो लाइट ही चली गई, कंप्यूटर क्या काम करे, अल्लाह ताला खुद दिखा देता है। अगर तुम दीन पर एतराज करोगे तो तुम्हारे साथ यही सलूक हो, इसलिए जो दीन पर चलता है अल्लाह उसकी मदद करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम, उनकी मदद शामिल हाल होती है, बुजुर्गान दीन की मदद शामिल हाल होती है। इसलिए दीन पर इस्तेकामत के साथ अमल कीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए। मेरे वालिद ग्रामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने एक जुमला इरशाद फरमाया, और मैं अक्सर कहता हूं कि हम 2 घंटे की तकरीर में वो बात ना कहें जो अल्लाह का वली 2 जुमलों में कह दे। सरकार ने फरमाया ना हदीस शरीफ, जिसका मफहूम यह है कि जिसने 40 दिन अल्लाह के लिए खास कर लिए, अल्लाह तबारक व ताला उसके कल्ब और जबान से हिकमत के चश्मे जारी फरमा देगा। 40 दिन जिसने अल्लाह के लिए खास कर लिए, और जिसने पूरी जिंदगी खास कर ली हो उसके कल्ब और जबान से कैसे हिकमत के चश्मे निकलेंगे। आप पढ़ते हैं ना बुजुर्गान दीन के मलफूजात, उनके अकवाल, ये पढ़ा कीजिए और उस पर गौर कीजिए, 2 जुमले होंगे और उसमें सब कुछ होगा। पूरी किताब वो बात नहीं कह सकती जो अल्लाह के वली के 2 जुमलों में हो, ये उनके कल्ब पर इल्का होता है। तो हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफील जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने फरमाया, दुनिया को दिल में ना रखो जेब में रखो, दुनिया को दिल में ना रखो जेब में रखो। जो चीज दिल में होती है निकालना मुश्किल होती है, जेब में होती है निकाल के फेंक दे। आई बात समझ में, जेब में जो चीज होती है ना फट से निकाल के फेंक, दिल से निकालना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। तो दुनिया दिल में ना हो। अच्छा, दुनिया की मिसाल देते हुए फरमाया, कश्ती पानी में चलती है ना, खुशकी पे तो नहीं चलती, कश्ती के चलने के लिए पानी होना जरूरी है, पानी नहीं तो कश्ती चल ही नहीं सकती, आप खुशकी पर रख दें खड़ी रहे, वो है ही पानी के लिए। तो पानी जब तक कश्ती के बाहर है नेमत है, समझ रहे, और कश्ती के अंदर आ जाए तब जहमत है, बाहर है तो नेमत है और अंदर आ जाए तो जहमत है, वही डुबो देगा ना पानी, अगर कश्ती में भर जाए गया, और जब तक बाहर है नेमत है, आप चले जा रहे हैं आराम से, समंदर का सफर कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, दरिया की सैर हो रही है जब तक पानी बाहर। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत जब तक तुम्हारे दिल से बाहर है तो सही है, और जब दिल के अंदर आ जाएगी यही पानी की तरह डुबो देगी। इसलिए दुनिया को दिल में ना रखो जेब में रखो, जेब में जब चाह निकाल के फेंक दिया। मखदूम समनानी ने सल्तनत को फेंक दिया, लात मार दी, कितना आराम था, कितना सुकून था, एक हुक्म पर काम हो रहा है, ऑर्डर दिया काम हो गया। बादशाह वक्त की एक हैसियत होती है ना, जहां चाहे चले गए, जिस किस्म का खाना चाह खा लिया, बेहतरीन गद्दों पर, नरम गुदास गद्दों पर, रेशमी इन गद्दों पर आराम हो रहा है, जब निकल रहे हैं सलूट मारा जा रहा है, हर जगह इज्जत हो रही है, शहनशाह समनान आ रहे हैं, सैयद अशरफ जहांगीर समनानी आ रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि ये सारी इज्जत, ये एहतराम, ये सिर्फ सल्तनत की वजह से है। अगर सल्तनत छिन गई ये सब खत्म हो जाएगा। और ये हकीकत है ना, जब तक कोई ओहदे पर होता है इज्जत होती है, आगे पीछे फौज, सिपाही, सिक्योरिटी दौड़ रही है। और जब वही आदमी सदारत से उतर गया, आम आदमियों की तरह जा रहा, कौन जा रहा है, कहने एक्स मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स लग जाता है, साबिक साबिक सदर जा रहे हैं, साबिक वजीर आजम जा रहे हैं। क्यों? पहले थे अब नहीं है। रूहानियत में साबिक होता ही नहीं है। गौसे आजम है तो हमेशा के लिए है, साबिक गौसे आजम नहीं है। गरीब नवाज है तो हमेशा के लिए, साबिक गरीब नवाज नहीं है। मखदूम सुल्तान, मखदूम समनानी, महबूब यजदानी है, गौसुल आलम है तो कयामत तक के लिए साबिक नहीं। तो ऐसे ओहदों के पीछे क्यों भागते हो जिसमें साबिक हो जाए? हमें वो ओहदा चाहिए जो हमेशा के लिए है। और वो ओहदा क्या है? हमें गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहदा चाहिए, ये हमेशा के लिए। तो बात कहां से चली, कहां पहुंच गई, मैं फिर अपने मौजू की तरफ वापस आता हूं। हमारा अकीदा क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा इल्म से सब कुछ जानते हैं। जो जाहिर में जानते हैं, जो बातिन में है वो जानते हैं, हर चीज जानते हैं। हैरत की बात यह है, जिनकी नियतों में फतूर है, एक साहब ने किताब लिखी, खुसूसियाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें वाकयात लिख रहे हैं। कौन से वाकयात? जो मैंने बयान किए, कुछ ये भी, कुछ इसके अलावा भी। और लिखकर कहते हैं ये कोई मौजजा नहीं है, ये ऐसा नहीं है हुजूर जानते हैं, ये तो खसूसियत है। तुम क्या खसूसियत कहो या कुछ कहो, अल्लाह ने तुमसे भी लिखवा दिया। मेरे नबी की शान तुम भी बयान करो, क्या तुम उसको खसूसियत कह दो या हुजूर की शान कह दो या हुजूर का मौजजा कह दो? दुश्मनों से अल्लाह ने लिखवा दिया। और कितने अकल के अंधे हैं, लिख भी रहे हैं और फिर इनकार भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो अल्लाह ने बता दिया, तो इन्होंने बता दिया। हम कब कह रहे हैं कि खुद बताया, हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह ने मुझे बताया, मैं तुम्हें बता रहा हूं। शान को घटाने की कोशिश, लेकिन जिसकी शान खुदा बुलंद करे उसे कोई घटा नहीं सकता। हम सिर्फ एक बात ये कहते हैं, अगर तुम ये कहते हो कि नहीं जानते, सिर्फ ये बता दो कि अल्लाह का पता किसने बताया, अल्लाह ताला मौजूद है, किसने बताया? हमारे वाले साहब ने बताया, आपके वाले साहब ने बताया, दादा ने बताया, परदादा ने, किसने बताया? उनको उन्होंने बताया, उनको उन्होंने बताया, तबे ताबेईन ने ताबेईन को ताबेईन ने सहाबा को सहाबा ने, किससे सुना? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात वहीं पहुंचेगी जी, किसने बताया? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कयामत तक होने वाले वाकयात, जो कुछ होना है सब हुजूर ने बता दिया, सारी निशानियां, एक एक निशानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दी, कुर्ब कयामत में ये होगा। और जो कुछ बताया, एक हर्फ इधर से उधर नहीं है, निशानियां जाहिर हो रही, अक्सर निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और अक्सर निशानियां ऐसी जो अभी बाकी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ईमान है और यकीन कामिल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में कयामत की जो जो निशानियां बयान की गई हैं वो पत्थर की लकीर है, इधर से उधर नहीं हो सकता, वो सब कुछ होना है, उसका वाक़े होना लाजमी है, जरूरी है। इसलिए कि जिसने बताया उसका इल्म ऑथेंटिक है, मुस्तनद इल्म है। तो अल्लाह ने फरमाया वा अल्लामा का, हमने सिखा दिया। क्या सिखा दिया? मालम तकुन तालम महबूब, जो नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया। सब कुछ ऐसा जुमला है कि जो जो भी चीजें हैं सब इसी के अंदर आ गई। दुनिया का इल्म इसी में है, आखिरत का इल्म इसी में है, कब्र का इल्म इसी में है, आलम बरजक उसका इल्म इसी में है। और कितनी रिवायत मौजूद है, मशहूर रिवायत आपने सुनी होगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रही, दो कब्रों पर अजाब हो रहा, खजूर की शाख तोड़ी, एक इधर गाड़ दी, एक इधर गाड़ दी, तफसील आप सुन चुके हैं। कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर हैं जमीन पर, देख लिया कि क्या हो रहा, और ये भी जानते हैं क्यों हो रहा। खाली ये नहीं कि हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका सबब क्या है, बता भी दिया। एक पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था और दूसरा चुगलखोर, ان دو اعمال کی وجہ سے ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا، اور وہ شاخیں بھی گاڑ دیں اور ان کے گاڑنے سے عذاب موقوف بھی ہوا، تو سرکار کے اس عمل سے قبر والوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ فائدہ ہوا، تو جو نبی اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو وہ نبی اگر آج اس عالم میں ہے تو اس عالم والوں کو کیوں نہیں فائدہ پہنچا سکتا؟ یقیناً پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سب عالم کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے، ایک عالم کے لیے نہیں۔ اگر صرف دنیا کے لیے ہوتے تو قبر والوں کو فائدہ کیسے ہوتا، اور اگر صرف عالم برزخ کے لیے ہوتے تو دنیا والوں کو فائدہ کیسے ہوتا؟ اسی لیے عالمین فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دی۔ عالمین میں سارے جتنے بھی عالم ہیں سب اس میں شامل ہیں، اور میرے رسول سب کے لیے رحمت، سب کی مدد فرما رہے ہیں، سب کی دستگیری فرما رہے ہیں، اور ان عالم میں رہنے والی مخلوقات کے احوال سے باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ وہ مخلوقات کیا کر رہی ہے، ان کی کیا کیفیات ہے، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم انہیں عطا فرما دیا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عطا کردہ علم سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ 13 ذی قعدہ یعنی آئندہ ہفتہ جو آ رہا ہے، 29 اگست، والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی 10ویں سالانہ فاتحہ درگاہ شریف میں رات 10 بجے چادر پوشی ہوگی، اور اس کے فوراً بعد محفل شروع ہو جائے۔ اس لیے تمام حضرات مریدین، معتقدین، متبصرین جتنے بھی ہیں، رات 10 بجے سے پہلے درگاہ شریف میں حاضر ہو جائیں۔ ایک یہ اعلان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کے ہمارا طریقہ ہے کہ جس بزرگ کا عرس آتا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے معمولات کے علاوہ، یعنی جو وظائف آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ، صاحب عرس کے لیے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخشیں۔ اس میں آپ قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی سورت، سورہ اخلاص ہو، سورہ مزمل ہو، سورہ یاسین ہو، کوئی بھی سورت جتنا آپ پڑھ سکیں اس تاریخ کے آنے سے پہلے، یعنی آج اتوار ہیں اور آئندہ ہفتے کو ہوگی، تقریباً ایک ہفتہ پورا باقی، تو 7-8 دن میں آپ حضرات، تمام خواتین و حضرات جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، اپنے اپنے طور پر پڑھیں اور اس کو نوٹ کر لیں، اور 13 تاریخ کو جب ایصال ثواب ہوگا اس وقت جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ لکھ کر اور اپنا نام لکھ کر ہمیں دے دیں، تاکہ آپ کی طرف سے ایک روحانی تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ تو یہ دو اعلان ہم نے کیے ہیں، اس کو یاد رکھیے، اور وقت کی پابندی کیجیے، 10 بجے سے پہلے، رات 10 بجے سے پہلے ہفتے کے دن 29 اگست درگاہ شریف میں حاضر ہو جائیں، چادر پوشی میں شرکت کریں، اور اس کے بعد محفل نعت ہوگی اس میں شرکت کریں۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔